मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्ताति जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल में सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सब लोग पिछले दिनों से लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार करते हैं। जीवन अच्छा तब बनता है जब हमारी दृष्टि निर्मल हो, हमारा ज्ञान निर्मल हो और हमारा आचरण या हमारे परिणाम निर्मल हो। इन तीनों को निर्मल बनाना आवश्यक है। मजा यह है कि यदि दृष्टि निर्मल हो जाए तो ज्ञान भी निर्मल हो जाता है और आचरण में निर्मलता आने लगती है। जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती तब तक ज्ञान और आचरण दोनों में निर्मलता नहीं आती। इसलिए हमने पिछले दिनों ये समझा था कि दृष्टि को निर्मल बनाने का प्रयास करें। दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए जरूरी है कि हम जो चीज जैसी है उसे वैसा ही अनुभव करें या उसे वैसा ही माने। तो जिन चीजों के हम संपर्क में आते हैं वे तीन ही चीजें हैं। एक संसार जो कि दिखाई पड़ रहा है, हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। एक हमारा अपना स्वयं का शरीर और दूसरा जो पांचों इंद्रियों के विषय बनते हैं, ऐसी विषय सामग्री। इन सब के बारे में हमारी दृष्टि अगर वास्तविकता को जान लेवे तो फिर वो निर्मल हो जाए। संसार शरीर और भोगों के बारे में यदि हम ठीक ठीक समझते हों, जानते हों, तो हमारी दृष्टि निर्मल हो जाए। इसके लिए जरूरी है फिर कि हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में आना पड़ेगा, क्योंकि संसार शरीर और भोगों का स्वरूप ठीक ठीक हमें समझ में आए इसके लिए बहुत मदद की जरूरत है। वो मदद हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र करते हैं। तो हमने ये भी समझा था कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा हम रखेंगे तब जाकर के हमारी दृष्टि निर्मल होगी और उनके द्वारा कहे गए जैसा वस्तु स्वरूप है उसका जब हम अभ्यास करेंगे तब हमारी दृष्टि निर्मल होगी। और उस वस्तु स्वरूप का अभ्यास करने के बाद जब हमें ये अनुभूति होने लगेगी कि हाँ सचमुच पर पदार्थ का स्वरूप अलग है और मेरे अपने आत्मा का स्वरूप अलग है, ऐसा जब आपापर का भेद विज्ञान हो जाता है जब हमारी दृष्टि निर्मल। और या कि हम सरल भाषा में कहें तो ये कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि। दृष्टि की निर्मलता और कोई बात विशेष नहीं है, वो यही है कि पर पदार्थों से पृथक है मेरा आत्मद्रव्य, ऐसा हमको एहसास होने लगे तो हमारी दृष्टि निर्मल हो जाए। इतने सारे उपाय करने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि हमारी दृष्टि निर्मल हो ही जाए। पहले इतने सारे उपाय करवा देंगे
फिर उसके बाद कहेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि दृष्टि निर्मल हो ही जाए। दृष्टि निर्मल तब होती है जब हमारे अपने अंतरंग में पड़े हुए मिथ्यात् और अनंतानुबंधी इत्यादि जो कषायें हैं उन सब का क्षय उपशम और क्षयोपशम नहीं हो जाता तब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती। हम सिर्फ बाहर से उपाय कर सकते हैं, अपनी भूमि तैयार कर सकते हैं, पर किस तरह से फिर हमारे कर्मों का क्षय क्षयोपशम और उपशम होगा ये हमारे बस में नहीं है। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उनके द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप पर विश्वास करके उसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने आत्म स्वरूप को पर पदार्थों से भिन्न समझ सकते हैं, उसमें हम अपनी रुचि निरंतर बढ़ा सकते हैं। इतना हमें निरंतर करते रहना चाहिए। इतने से ही एक दिन सहसा हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब हमारी दृष्टि निर्मल हो गई और हमारी दृष्टि निर्मल हो जाएगी, इतना हमें काम करना। लेकिन दृष्टि के निर्मल हो जाने के बाद भी एक काम और शेष रहता है, वो ये कि हमारे परिणाम निर्मल होना चाहिए। दृष्टि निर्मल हो जाने के बाद भी कषायों के उद्रेक में हमारे परिणाम गड़बड़ा जाते हैं, उन परिणामों को ठीक ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमने पिछले दिनों समझा था कि उन परिणामों को ठीक करने के लिए हमें निरंतर वास्तविकता का अभ्यास करना चाहिए, जिसे हम भावना कहते हैं। भावनाएं निरंतर भाने से या निरंतर अनुपेक्षा करने से हमारे परिणाम निर्मल होते चले जाते हैं, क्योंकि दृष्टि तो हमको निर्मल हो गई, मिल गई हमें दृष्टि निर्मल, लेकिन उस निर्मल दृष्टि को हम निरंतर जब तक बनाए नहीं रखेंगे, जब तक हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे, उसमें निरंतरता नहीं लाएंगे, विचारों की निरंतरता जब तक नहीं होगी तब तक हमारे परिणाम निर्मल नहीं होंगे। ये बात भी हम पिछले दिनों समझ चुके हैं। तो बारह भावनाएं या कि वैराग भावना या कि मेरी भावना या कि सोलह कारण भावनाएं या कि पांच पांच व्रतों को संभालने वाली पांच पांच भावनाएं जो अपन पढ़ते हैं तत्वार सूत्र जी में कि अहिंसा व्रत को पालन करने के लिए कौन सी भावना भानी चाहिए, पांच भावनाएं, और सत्य के लिए कौन सी भावना चाहिए, ये सब जितनी भी भावनाएं हैं वो सब भावनाएं क्या करती हैं, हमारे परिणामों को निर्मल करती हैं। परिणामों की निर्मलता का अर्थ क्या है, ये बहुत बहुत सीधी सीधी सी चीजें हैं, कोई कठिन नहीं है। जितना ज्यादा परिणामों में संक्लेश होगा उतने परिणाम बिगड़ गए, और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतने परिणाम निर्मल हो गए। अब संक्लेश क्या कहलाता और विशुद्धि क्या कहलाती, अपन अगर इस तरह चले तो बहुत आसानी होगी। कषायों की तीव्रता का नाम संक्लेश है और कषाय की मंदता का नाम विशुद्धि, ज्यादा कठिन परिभाषा नहीं है। हमारे कषाय जिस समय मंद हैं तो हमारे परिणाम विशुद्ध हैं, हमारे परिणाम उतने निर्मल हो गए। तो इन कषायों की मंदता के लिए क्या किया जाए, तो कषाय की मंदता के लिए पहली बात तो यह है कि हमारी दृष्टि निर्मल हो, वो तो हमने कर ली। सम्यक दर्शन के साथ कषायों की निर्मलता की जाए तो कर्म की निजरा होती है, मिथ्या दृष्टि कषायों की निजरा कर ले हुए तो ज्यादा काम नहीं सटता उसका। इसलिए दृष्टि निर्मल नहीं हो और कषाय मंद हो जाए तब भी काम नहीं बनता, ये हमने पहले समझ लिया। इसलिए हमने दृष्टि निर्मल कर ली, अब कषायों को मंद करने के लिए क्या करें, कषायों को मंद करना ही अनुप्रेक्षा का काम है या कि भावनाओं का काम। जितनी भी हम भावनाएं भाते हैं वे भावनाएं हमारी दृष्टि को तो निर्मल करती ही हैं, हमारे परिणामों को भी निर्मल करती हैं, हमारी कषायों को मंद करती हैं। हमें सुख दुख के बीच हर्ष और विषाद से बचाने वाली यही बारह भावनाएं हैं। इसलिए हमारे भीतर वैराग उत्पन्न करने वाली ये बारह भावनाएं या हमारे मोह को कमजोर बनाने वाली, मोह को कमती करने वाली ये बारह भावनाएं हैं, ये हम समझ चुके हैं। एक चीज और आज हम समझ लें उसके साथ साथ कि हमारे अंदर अगर ये विचार की शक्ति निरंतर बढ़ती चली जाए, वास्तविकता का जो हम विचार करते हैं भावनाओं के दौरान, या कि हम अपने कषायों को मंद करते हैं और हम अपने मोह को कम करते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती जाती है। और विचार शक्ति का प्रयोग तो इतना जबरदस्त है कि वही सुकमाल जिनको कि अगर दीप की रोशनी दिखाई पड़ जाए तो आंख से आंसू आ जाते थे, और जिनके गद्दे के नीचे अगर सरसों का दाना पड़ा हो तो उनको वो चुभता था, और शाली चावल जो बनाए थे उनकी मां ने उसमें थोड़े से और दूसरे किस्म के चावल मिला दिए थे तो वो उसमें से बीन बीन के वो खाते थे। बड़ा आश्चर्य था कि इतना डेलिकेट, इतना सुकमाल व्यक्ति, लेकिन एक दिन जब दृष्टि बदल गई, जब उनकी विचार शक्ति बहुत दृढ़ हो गई, तब उस विचार शक्ति के माध्यम से अपनी ही जीवन साथियों के साड़ियों को बांध बांध करके और नीचे उतर गए थे और उतर करके जंगल की रास्ते में चले गए थे और कंकर पत्थर के बीच में से, जिसने कभी बाहर सूरज की रोशनी नहीं देखी, रत्न दीप में जो जीवन जिया जिसने, और वो एक दिन विचार की इस शक्ति को, अपनी भावनाओं को, उन्होंने क्या किया था, उनको क्या सुनाई पड़ा था? उपवन में ठहरे हुए महाराज से भावनाएं सुनाई पड़ी थी, 12 भावनाएं, और उस भावनाओं से प्रेरित होकर उनकी विचार शक्ति इतनी अधिक दृढ़ हो गई कि कल तक जिस शरीर से इतना मोह था, कि जिस शरीर की जरा सी तकलीफ में और उनकी चेतना कांप जाती थी, आज उसी शरीर पर आने वाली तमाम विपत्तियों के बावजूद भी उनकी चेतना बिल्कुल स्थिर है। इतने ही नहीं, और 3 दिन तक स्याली उनका शरीर का भक्षण करती रही, फिर भी वे अपने आत्मस्वरूप से विचलित नहीं हुए। ये कौन सी ताकत आ गई? ये विचार की ताकत है, ये भावनाओं की सामर्थ्य। क्या हम इससे कोई संदेश नहीं ले सकते हैं? हम 12 भावनाओं को कमजोर क्यों समझते हैं? 12 भावनाएं तो हमको बहुत दृढ़ बनाती हैं। जितना जितना शरीर का जिस मोह जिसका ज्यादा होगा, उतनी शरीर की तकलीफ आसेगी, और जिसका मोह शरीर से जितना कम होगा और चीजों से जितना, उसको उतना ही कम एहसास होगा। सीधी सी प्रक्रिया है। तो ये 12 भावनाएं करती क्या है? हमारे इस मोह को, हमारे राग द्वेष को, हमारे परिणामों की मलिनता को ये कम करती जाती हैं, और जैसे जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ती है, हमारी विचार की शक्ति दृढ़ होती जाती है। आज वर्तमान में हमारे पास विचार हैं, लेकिन उनमें दृढ़ता नहीं है। हम विचारों की शक्ति के प्रयोग करना भूल गए हैं। हम अपने ही भावनाओं के द्वारा कितने काम कर सकते हैं, ये हमारी शक्ति समाप्त हो गई। आज मंत्र का युग नहीं रहा, आज तंत्र का युग भी नहीं रहा, यंत्र के युग पर आ गए। सारी काम मशीन से करते हैं, और पहले के लोग अपनी ही आत्मबल के माध्यम से मंत्र से भी बहुत सारे काम कर लिया करते थे। हालांकि मंत्र आज भी है, आज जो फॉर्मूला है, कंप्यूटर का फॉर्मूला है या कि एटॉमिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, वो एक मंत्र ही तो है। लेकिन उस मंत्र को हमने और यांत्रिक शक्ति में कन्वर्ट करके अपना उपयोग करना शुरू किया है। पहले लोग बिना यंत्र की मदद के अपने शरीर को ही यंत्र बना लेते थे, और उस मंत्र को के माध्यम से उसकी सामर्थ्य बढ़ा लेते थे, तो बड़े बड़े काम हो जाया करते थे। आज हम लोग जो है उस चीज को भूल गए हैं। हमारे भीतर जो आत्मा की सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को बढ़ाने वाली ये भावनाएं हैं, या निरंतर जो हमारे विचारों की सामर्थ्य है, वो हमारे अंदर इस तरह के परिवर्तन करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल ले, अगर हम अपने बार एक बार अपने मन में विचार कर ले जिन चीजों का, तो ऐसा नहीं है कि वे चीजें हमें ठीक वैसी दिखाई ना पड़े। एक व्यक्ति जो है वो तालाब के किनारे खड़ा हुआ था, और तालाब के किनारे, वो तालाब इतना झील थी, वो तो लेक एक तरह से, उसमें पानी बहुत स्वच्छ था, तो नीचे जो है कुछ सामान जो पड़ा हुआ है उसमें, वो सब दिखाई पड़ रहा था एकदम। अब देखिएगा, सुबह सुबह 5 बजे का समय है, और अलग अलग लोग उस तालाब के किनारे खड़े हैं। वहीं पर एक कवि किस्म का आदमी भी खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि उस तालाब में चंद्रमा की परछाई पड़ रही है। वो बहुत खुश है कि अरे वाह, कितना बढ़िया जो है इस तालाब के भीतर, ऐसे कि बस मैं अभी हाथ बढ़ाऊंगा और उस चंद्रमा को पकड़ लूंगा, इतना सुंदर मालूम पड़ रहा उसको, और कुछ नहीं दिख रहा उसको। लेकिन वहीं पर बाजू में खड़ा हुआ है एक कबाड़ी, और वो कबाड़ी क्या देख रहा है? वो चंद्रमा वंदना नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि एक कनस्तर पड़ा है, एक चप्पल पड़ी हुई है, और भी कुछ सामान पड़ा, ये यहां से हटे तो वो उठा लूं, बिक जाएगा, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। उसको वहीं पर जो चंद्रमा पड़ा हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा है, पानी निर्मल है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसे अपने मतलब की चीज दिखाई पड़ रही है। इस संसार में भी ऐसा ही है, जब तक हमारी दृष्टि या हमारा विचार हम परिवर्तित नहीं करते हैं, तब तक हमें चीजें हमारे अपने मुंह की वजह से जैसी हैं वैसी नहीं दिखाई पड़ती, जैसी हम देखना चाहते हैं वैसी दिखाई पड़ जाती हैं। इतना ही तो संसार में है, और क्या है? और अगर हम भावनाएं भाना शुरू कर देते हैं, तो जो चीज जैसी है ठीक वैसी ही हमें दिखना लगती है। वैसे तो हर व्यक्ति को पहले नंबर जब देखते हैं तो चीज ठीक ही दिखती है, बाद में उसमें फिर अपना राग द्वेष आरोपित कर देते हैं, ये अच्छी है या बुरी है। पहले नंबर कोई पेन देखा तो देखना आप कि खरीदने जाते हैं जब किसी दुकानदार के यहां पर, तो क्या करते हैं, ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ, इसका थोड़ा ढक्कन ऐसा है, इसका जैसा निब ठीक नहीं है, उसकी उसका कलर ठीक नहीं है, ये भी नहीं, सब बिल्कुल एनालाइज कर रहे हैं। जैसा होना जैसा है वो पेन बिल्कुल वैसे ही एनालाइज कर रहा है उसको, उसमें जो जो खामियां हैं वो भी हमको दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन जब हम उसमें से कोई पेन अपने पसंद का खरीद लेते हैं और पॉकेट में रख लेते हैं, फिर रास्ते में अगर कोई मित्र मिल जाए और वो कहे कहाँ गए थे, पेन लेने गए थे, दिखाना जरा, है तो बढ़िया, लेकिन यार इसका ये ठीक, हाँ रहने दो, ये ठीक नहीं है, वो बढ़िया है सब। अब क्यों नहीं हम सुनना चाहते उसके बारे में कि ये ठीक नहीं है, ये अब मेरा पेन हो गया, अब मेरा हो गया, इसलिए उसके बारे में मैं एनालाइज नहीं करूंगा, उसकी वास्तविकता भी जानना पसंद नहीं करूंगा। हमारे साथ भी यही है, जिसमें हम मैं और मेरापन डाल देते हैं, हमारे विचार वहीं से, जिसमें हम अपना मोह प्रक्षेपित कर देते हैं, जिसमें हम अपना मोह डाल देते हैं, वो चीज फिर वास्तविक हमें दिखाई नहीं पड़ती है। अगर हम निरंतर अनुपेक्षा या किबारे भावनाएं भाएं तो हमारे मन में वो भ्रम हटना शुरू हो जाता है, फिर चीजों को हम ठीक ठीक देखना और उनका ठीक ठीक उपयोग करना सीख जाते हैं, हम किसी भ्रम में नहीं रहते। अनुप्रेक्षा इस तरह हमें कितनी सारी बातें सलाह देती है। हम देखें कि अगर हम इस तरह से अनुप्रेक्षाएं अपने जीवन में भाते हैं या बारह भावनाएं भाते हैं या कि वैराग्य भावना भाते हैं, तो हमें वास्तविकता का बोध होने पर हमारे परिणाम भी निर्मल होना शुरू हो जाते हैं। आज अभी तक हमने ये समझा कि जो जो वस्तुएं हम देखते हैं या जो जो व्यक्ति हैं उनकी जो पर्यायें हमें दिखाई पड़ती हैं, दिखाई तो सिर्फ पर्याय ही पड़ती है, चाहे वो पुद्गल की पर्याय हो, चाहे वो जीव की पर्याय हो, धर्म अधर्म आकाश और काल इनकी पर्यायें तो दिखाई नहीं पड़ती, व्यवहार काल थोड़ा सा मालूम पड़ता है घड़ी घंटा की वजह से, बाकी वस्तु के अंदर होने वाला परिणमन भी हम नहीं देख पाते हैं, कहाँ देख पाते हैं। ये दीवार निरंतर जो है वो पुरानी होती चली जा रही है, हम थोड़ा सा माप सकते हैं कि 10 साल पहले बनी थी कि 20 साल पहले, लेकिन 20 साल पहले जैसी थी और अभी 20 साल बाद जैसी है, उसमें कितने चेंजेस आ गए हैं हम नहीं अपनी इन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन निरंतर चीजें परिवर्तित होती रह रही हैं और इतने नहीं वे निरंतर जीर्ण शीर्ण होती चली जा रही हैं। हम जब से बनाते हैं किसी चीज को उसी समय से वो टूटना शुरू हो जाती है, हर चीज यहाँ पर अनित्य है या कि क्षण भंगुर है, इस तरह का हमें एहसास होना चाहिए। जानकारी जानकारी तो बहुत है हमारे पास, फट से कह देंगे, लेकिन एहसास होना चाहिए। वो एहसास कैसे होगा, वो भी हमने समझा था कि हम निरंतर भावनाएं भाएंगे तो हमें ऐसा एहसास, हम निरंतर सजग होकर के ध्यान रखेंगे, जैसे ही कोई चीज हमारे हाथ में आई फौरन हमें ध्यान आ जाए कि ये तो निरंतर टूट ही रही है, अनित्य है, मेरी अपनी पर्याय भी कल में जो था वो आज नहीं हूं। ए मैन कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन अ रिवर, कोई भी व्यक्ति दो बार एक ही नदी में पांव नहीं रख सकता, क्योंकि पहले जब वो पैर रखता है तब नदी कुछ और होती है, फिर अगले क्षण पैर रखता है तो कितना पानी निकल गया और वो स्वयं व्यक्ति कितना बदल गया। अपन इसको समय सारजी में कैसा पढ़ते हैं, जो वेदि वेदित जदि समय समय विनस्दे उहियम तम जान गोदुनानी उभय मबिन कंखदि कदापि। जो वेदन करता है और जिस चीज का वेदन किया जाता है वे दोनों निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं, इतना सूक्ष्म है परिणमन, निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं, तब फिर क्या करें। जिस समय हम चीजों को चाहते हैं उस समय चीज हमें नहीं मिलती, अगले क्षण मिलती है, तो अगले क्षण जब मिलेगी तो जो चीज हमने चाही थी वो नहीं मिलेगी, उसकी एक पर्याय निकल गई और जो हम चाहने वाले थे हमारी भी पर्याय निकल गई, इतना सूक्ष्म है। कभी अपन इस तरह विचार नहीं करते हैं, मोटा मोटा विचार तो कर लेते हैं, मगर इतनी बारीकी से अनुप्रेक्षा क्या करती है, अनुप्रेक्षा हमें हर चीज की डेप्थ में ले जाती है, हर चीज की फाइननेस में ले जाती है, हर चीज की होलनेस में ले जाती है, हमको समग्र रूप से दिखाई पड़े कोई भी चीज। चावल पकने रखते हैं वो चावल धीरे धीरे भात बन जाते हैं तो बना हुआ भात तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस क्षण से चावल भात बनने की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं क्या हर स्टेज दिखाई पड़ती है, नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन चावल प्रतिक्षण भात बन रहे हैं, जब पूरे बन जाते हैं तब दिखाई पड़ता है। और जो व्यक्ति बारह भावनाओं का चिंतन करता है या अनुप्रेक्षा करता है उसे उसी क्षण से दिखना शुरू हो जाते हैं, उसकी भीतर की आंख इतनी अधिक पैनी हो गई है, इतना पेनिट्रेशन पावर बढ़ गया उसका कि वो जान रहा है कि ये चावल जब से पानी में डाल के पकने रखे हैं तभी से भात बनना शुरू हो गया। वो तो पर्याय बाद में प्रकट होती है, भात रूप पर्याय प्रकट, इतनी अनित्यता हमें दिखाई पड़ने लगे, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सुबह शाम 10-10 मिनट बैठें और इस तरह का चिंतन करें, फिर दिन भर जो है बड़ी शांति रहती है, बड़ा धैर्य अपने जीवन में आ जाता है। बहुत जल्दी हम परिवर्तन से फिर प्रभावित नहीं होते। अनित्यता का चिंतन हमें बाहर में होने वाले परिवर्तन से होने वाले हर्ष विषाद को कम करने में मदद कर देती है। इसी तरह हमने ये भी समझा था कि हम यहां पर जिससे भी संबंध बनाते हैं, चीजों से संबंध बनाते हैं, व्यक्ति से संबंध बनाते हैं, उन सब संबंधों की तासीर क्या है। उन सब संबंधों के साथ यह है कि वो थोड़े समय तक निभते हैं, उसके बाद उनकी लिमिटेशंस हैं, उनकी सीमाएं हैं, वे फिर निरंतर जरूर से वे पृथक हो जाते हैं। दो अलग अलग चीजें, जयनंद कुमार लिखते हैं कि दो लोग एक साथ नहीं रह सके इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दो लोग एक साथ नहीं रह सके इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो इसमें है कि इतनी देर तक एक साथ रह कैसे सके। हम लोग सोचते हैं कि ये संबंध हमारे शाश्वत हैं, नहीं, संबंध की तासीर ये है कि वे कुछ समय तक ही रहते हैं, उनकी लिमिटेशंस, उनकी सीमाएं हैं। और संबंधों से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना, ना संबंधी से ज्यादा अपेक्षा रखना। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा संबंधी तो हमारा अपना शरीर है, हम इससे कितनी आशाएं लगा के बैठते हैं, लेकिन क्या कभी वो आशाएं पूरी होती हैं? रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब रिश्ता है, जिंदगी भर साथ रहे और तारुफ ना हुआ, परिचय तक नहीं हो पाता है इसका जो हमारे बहुत निकट है, इसकी तासीर भी समझ में नहीं आती। रोज धुलाते हैं, उस धुलाते समय तो यही लगता है कि देखो कल से कितना बढ़िया हो गया, लेकिन ये नहीं दिखाई पड़ता कि कल से कितना ज्यादा जीर्ण हो गया। तभी तो ये 100 साल के बाद एकदम जीर्ण हो जाता है। वो जो 100 साल के बाद जीर्ण दिखाई पड़ता है वो पहले दिन से क्यों नहीं दिखने लगता? तब फिर इससे जो संबंध होगा, जो व्यक्ति वस्तु की अनित्यता को जान लेता है वो उस अनित्य में कभी भी शरण नहीं खोजता है, जो नित्य है उसकी शरण में जाता है। ये हमने समझा था कि अशरण भावना हमें ऐसा नहीं है कि अलग थलग छोड़ देती हो, अशरण भावना हमें स्वावलंबी बना देती है कि सारी जिम्मेदारी हमारी है, यहां पर जितनी भी चीजें हैं उनकी शरण ले तो उन चीजों की सीमा है, वो चीजें कितनी देर तक हमारा साथ दे सकेंगी, हम क्यों उनकी शरण लेकर के और बाद में दुख हासिल करते हैं। इस तरह का विचार अगर हमारे भीतर है तो वही तो आचरण भावना है। फिर हम दलबल देवी देवता पढ़ेंगे तो ठीक ठीक समझ में आएगा कि सचमुच हम जिससे अपेक्षा रखते हैं वो हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाता है, हम जिसको अपना साथी मानते हैं वो थोड़ी दूर हमारे साथ चलता है, फिर या तो उसे कहीं उतरना पड़ता है या उसका रास्ता बदल जाता है या मेरा ही रास्ता बदल जाता है। ये तो थोड़ी देर का संबंध है और उस संबंध को हम अच्छे से व्यतीत करें। जिन संबंधों में हमें शाश्वतता नजर आने लगती है वे संबंध फीके पड़ जाते हैं। आप किसी से ट्रेन में मिले, एक दिन के लिए मिले हैं, बड़े प्यार से बोलेंगे और मालूम पड़ जाए कि इसके साथ जिंदगी भर रहना है फिर नहीं बोलते उतने प्यार से। देख लो आप, ऐसा है, ऐसा हम अनुभव करते हैं इन चीजों को। जो चीजें हम जिन चीजों के प्रति हम जितने ज्यादा कॉन्सियस होते हैं, जितने ज्यादा अलर्ट होते हैं, वे चीजें हमसे उतनी जल्दी पृथक हो जाएंगी, ऐसा एहसास हमारे भीतर होता। और जिनके बारे में कॉन्फ्यूजन्स हो जाए कि ये तो हमारी अपनी चीजें हैं, फिर उनके तरफ हमारा उतना ध्यान नहीं जाता। दांत टूट जाने के बाद जीभ बार बार वहीं जाती है, लेकिन जिंदगी भर दांत लगा रहा, कभी भी टच करके नहीं देखा कि है कि नहीं। गिनते हो कभी एक एक दांत को अलग अलग जीभ से टच करके कि हाँ ये वाला ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। नहीं, जब वो टूट जाता है तो जीभ वहीं वहीं जाती बार बार। ये क्या चीज है? इससे मालूम पड़ता है कि हम जिन चीजों में हम शरण मान लेते हैं उन चीजों का हम उपयोग तक नहीं कर पाते हैं, जिन चीजों को हम शाश्वत मान लेते हैं उनके प्रति फिर हमारी दृष्टि ही बदल जाती है। हमें शाश्वत को शाश्वत मानना चाहिए और अशाश्वत को अशाश्वत मान के उससे वैसा ही व्यवहार कर, हमारे व्यवहार से मालूम पड़ेगा कि हम किस चीज को शाश्वत मानते हैं, संबंधों को हम कितना ठीक ठीक समझ पा रहे हैं। अगर हम जितनी अपेक्षा रखेंगे संबंधों के बीच, समझ लीजिएगा कि हमने संबंधों को समझा नहीं। हम जिससे एक दिन के लिए मिलते हैं हम उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते, सिर्फ एक अपेक्षा होती है कि मेरा भी रास्ता ठीक से कट जाए और इसका भी रास्ता ठीक से कट जाएगा, फिर तो इसका स्टेशन आ जाएगा तो इसको उतरना है, मेरा आ जाएगा तो मुझे उतरना है। क्या ऐसा ही हम रोज नहीं अनुभव कर सकते हर व्यक्ति के साथ कि कितनी देर किससे मिले हुए हैं, क्या अपेक्षा रखना है? आगे ने तो लिखा है कि कब कहां ये मत पूछो, जब जहां भी हो जाए मिलना अच्छे से मिलना, क्योंकि यहां पर बहुत मुश्किल है, यहां संयोग वियोग निरंतर लगे रहते हैं, संयोग का सुख भी क्षण भर के बाद वियोग के दुख में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे संयोग में हर्ष क्या करना और ऐसे वियोग में विषाद क्या करना, ऐसा हमारे भीतर खुद कहने में बहुत आसान है। मैं बहुत आसानी से कह रहा हूं इस चीज को, और अपन रोज जो है पढ़ भी लेते हैं, फिर जिस जिसको अपना माना वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, गा करके पढ़ लेते हैं, व्याकुल का फल व्याकुलता, लेकिन जब मौका आता है तो व्याकुल का फल व्याकुलता तो है ही। उस समय हमको ये एहसास होना चाहिए कि अरे फिर हम भूल कर रहे हैं, कम से कम अपनी भूल मालूम तो पड़ जाए। जिस समय हमारे मन में विषाद आए, अगले क्षण ये भी ध्यान आ जाए कि इस विषाद का कारण मेरे भीतर है और व्यर्थ है, मैं क्यों विषाद से घिर जाता हूं। मुझे फौरन अपने को, जो जितनी जल्दी अपने को वहां से संभाल लेवे, समझना कि वो उतना ही अधिक अब अपनी भावनाओं को ठीक ठीक भा रहा है, वो ठीक ठीक अनुभव कर रहा है उन सब चीजों का। आज हमें समझना है कि जिस संसार में हम बैठे हैं और उस संसार के बारे में हमारा अपना सोच क्या है। हम सोचते हैं कि इस संसार में एक जो दिखाई पड़ रहा है वो तो लोक है, वो अपन लोक भावना में पड़ेंगे। दोनों को कंफ्यूज मत करिए, संसार भावना और लोक भावना में थोड़ा सा फर्क है। संसार हम सामान्य रूप से इसको कहते हैं जो दिखाई पड़ रहा है, नहीं ये संसार नहीं, वो तुम्हारे भीतर है, वो हमारे राग द्वेष से बनता है, और ये तो छह द्रव्यों से मिलकर बना है, वो लोक है। लेकिन हम मानते क्या है, हम अपने राग द्वेष का संसार निवृत्त करते हैं और उसके कर्ता बन के बैठते हैं, और फिर इतने ही नहीं, अगर अपने राग द्वेष के हम कर्ता बनते तो भी ठीक था, लेकिन हम तो पर पदार्थों के जो संसार में दिखाई पड़ते उनके भी कर्ता बन के बैठ जाते हैं। संसार यही है, उनके भोक्ता बन जाते हैं, उनके स्वामी बन जाते हैं। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वामित्व यही संसार है, और इससे अलग कोई संसार नहीं। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये संसार, तो ये तो बहुत अलग है, वो हमारे भीतर जो बना हुआ है वो हमारे कर्तापने से। इसलिए शायद लिखा है कि जब तक हम अपने इस कर्तापने को, भोक्तापने को, स्वामीपने को विड्रॉ नहीं कर लेंगे, इससे हम हट नहीं जाएंगे, तब तक इस संसार में हम दुखी रहेंगे। हमारी अज्ञानता है ये, और अज्ञानता ही दुख का कारण है। चारों गतियां दुख का कारण नहीं है, क्योंकि चारों गति दुख का कारण होती तो तीर्थंकर तो मनुष्य गति में पैदा होते हैं, और वे अनंत बन जाने के बाद भी उनके मनुष्य आयु का और मनुष्य गति का उदय है उनके, तो उनको भी दुख होना चाहिए, लेकिन उनको दुख नहीं होता। इसका मतलब है कि गति दुख देने वाली नहीं है, उस गति में मेरी अपनी जो अज्ञानता है वो मुझे दुख देती। संसार मुझे दुखी नहीं कर सकता, संसार में मेरी अपनी आसक्ति मुझे दुख देती है, मेरा अपनी इंडल्जिंग जो है वो, मेरा ठीक ठीक नहीं देख पाना संसार को, वो ज्यादा अधिक दुख देता है। संसार संसरीति संसारा, जिसमें संसरण लगा हुआ है, आवागमन लगा हुआ है, उसका नाम संसार है। और आवागमन, आवागमन कोई हमारा नहीं करवा सकता, अगर हम आवागमन का उपाय ना करें। आवागमन का उपाय तो राग द्वेष है, वो मेरे भीतर है, इसलिए सारा कुछ संसार हमारे अंदर ही है, ऐसा हम विचार करें। और फिर हम पढ़ते हैं कि दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावस्थनवान। इस संसार में बहुत गौर से देखें तो जिसे जो चीज, देयर आर टू ट्रेजडीज इन द यूनिवर्स, यहां पर दो ही दुखद चीजें हैं, एक तो वो जबकि कोई चीज हमें नहीं मिलती तब दुख होता है, और एक वो जबकि कोई चीज हमें मिल जाती है तब भी दुख होता है कि अब क्या करें, अब दूसरी चाहिए, ये तो मिल गई, ये मिल गई अब व्यर्थ हो गई है। जब तक नहीं मिली थी तब तक बात ठीक मालूम पड़ती थी, और जिस दिन मिल जाती है फिर उसका क्रेज खत्म हो जाता है, फिर किसी दूसरी चीज में हमारा ध्यान चला जाना। तो ठीक लिखा उसमें कि इस संसार में तो जो चीज नहीं मिली है उसका भी दुख है, जो मिल गई है वो भी कमती दुख दे रही हो या सुख दे रही हो, ऐसा नहीं है, वो भी खूब दुख देती है, सुख जरा भी नहीं देती। सुख ना ही लगा रहा इस संसार विषय, इस संसार में जरा भी लगार भी नहीं है सुख की। जहां जहां हम सुख देखते हैं वहां दुख की लगार तो है, वहां दुख का कॉन्टेक्ट तो है, वहां दुख से मिश्रित तो है। अपन पढ़ते हैं कर्म, यहां के संसार के सुख कैसे हैं, कर्म परवशे शांते दुखई अंत ऋतोदय पाप विजय, सब समझते हैं अपन कि किसी ना किसी कर्म के उदय में, साता के उदय में यहां सुख मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तविक सुख नहीं है। असाता का उदय आ जाता तो हम दुखी हो जाते हैं, वो भी सब कर्माश्रित है, मेरे अपने पूर्व के किए हुए कर्म है, और अंत सहित है, सुख भी है तो भी वो चला जाएगा, और दुख है वो भी चला जाएगा, और दुख से मिश्रित है वो, सुख है अगर तो दुख से मिश्रित है, और हमें नए पाप में डालने वाला है। ये संसार की तासीर है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इस संसार से हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कहना। हमने चिंतन तो कर लिया, इस चिंतन से क्या ऐसा चिंतन करके हम अपना पार पालेंगे, वो तो हम रोज पढ़ते हैं कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। लेकिन जब हमारे पास दाम नहीं होते हैं तो हम दुखी हो लेते हैं, जब हमारे पास दाम होते हैं तो और क्यों नहीं है, इसके लिए भी हम तृष्णा करके भी दुखी हो जाते हैं। तो हमने किया क्या फिर इन 12 भावनाओं का चिंतन करके? जब हमारे पास किसी चीज का अभाव होता है तो भी दुखी है, सद्भाव होता है तो कोई और चीज की आकांक्षा जागती है तब भी हम दुखी है, तो फिर इसका मतलब क्या? ये थोड़ा सा हमें आज विचार कर लेना चाहिए कि अगर संसार ऐसा ही है तो फिर हमें उससे आशा क्यों रखनी चाहिए? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों? इतनी बड़ी बात जब हमको समझ में नहीं आया, जब हमको ये चीज संसार में समझ में नहीं आती है कि यहां पर दुखी दुख है, तब फिर इतनी बड़ी बात कहना पड़ी कि अगर थोड़ा सबको भोगना पड़ता है, कर्म सब करते हैं, कर्म करने की सलाह भी सब देते हैं, मन वचन काय की क्रिया को पूर्णतः रोक देना, इसी का नाम युक्ति है। इसलिए पहले उठो जल्दी से, प्रवाह को दिशा दो और संभालो, जिस रास्ते से आते हैं बुरे संस्कार उस रास्ते पर जरा पहरा बिठा दो, अपने भावों का पहरा बिठा और कुछ नहीं है। अगर हम अपने शुभ भाव करना शुरू करें तो किसी पहरेदार की आवश्यकता नहीं है, अशुभ अपने आप आना बंद हो जाता है। शुभ भावों के लिए ये तो इस तरह का है कि एक बटन दबाओ दो दरवाजे एक साथ, एक बंद होता है और एक खुलता है, इस तरह की प्रक्रिया है। जैसे कमरे में बैठे हैं और दोनों तरफ खिड़कियां हैं, एक खिड़की गार्डन की तरफ खुलती है एक कचरा घर की तरफ, नहीं उनके तो साथ ही साथ का होता है चलता लगातार, लेकिन दूसरे को नित झूरे, दूसरे को देख करके अपने पुण्य के उदय में तो अपनी संपत्ति बहुत बहुत सारी हो गई, लेकिन जब जब दूसरे की देखता हूं तो तब भी तकलीफ होती। यहां तो पुण्य के उदय में भी सुख साता नहीं है, अपन को सब भी मिल जाए लेकिन दूसरे को अपने बराबर मिल जाए तो जो तो ठीक, और यहां तो बड़ा मुश्किल है कि हमें मिल गया था तो ठीक था, इतने में सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये भी, ये हमारा पुण्य भी हमें सुखी सुख नहीं दे पाता है, ये भी हमें अंततः दुख, ये वास्तविकता तो ये। अब इस वास्तविकता को आप जितने जल्दी समझ ले, मैं जितने जल्दी और आप जितने जल्दी, सबको इस वास्तविकता को तो समझना ही पड़ेगा, जो जितने जल्दी समझ ले। और वास्तविकता समझने के बाद व्यवहार बदलना चाहिए, ये हमें अपने भीतर स्वयं देखना चाहिए, दूसरे के भीतर नहीं, अपने भीतर स्वयं, कि हमारा थोड़ा परिवर्तन हुआ कि नहीं, हम वास्तविकता को समझ गए हैं। तब अगर हमारे जीवन में थोड़ा भी इस तरह की समझ आ जाती है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, कम से कम हाव हाव तो खत्म हो जाएंगे, इतना तो हो सकता है, और ज्यादा हो या नहीं, ये जो हमारे अंदर एक दौड़ मची हुई है संसार में सुख पाने की, उसमें तो कमी आ ही जाना चाहिए। सुख मिल जाए थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, लेकिन सुख के लिए हम दौड़ेंगे नहीं, अब इतना तो समझ में आए, क्योंकि हम कितने भी दौड़ लेते हैं वो मिल भी जाता है फिर भी अल्टीमेटली हमें वो दुख में ही ले जाता है, तो इससे हम दौड़ेंगे तो नहीं, अगर मिल जाएगा तो इंटरटेन कर लेंगे, उसका मजा ले लेंगे। हाँ देखो, मैं इस तरह की सलाह दे रहा हूं आपको कि अगर मिल जाएगी कोई चीज बाय द वे तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो दुखी तो नहीं है कम से कम। अगर हम नहीं मिलने पर दुखी नहीं होंगे तो मिल जाने पर ज्यादा सुखी भी नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। जिस व्यक्ति को अपना अपमान ज्यादा तकलीफ देता है उसी को सम्मान की आकांक्षा होती, और जिसने अपमान को अपमान ही माना उसको सम्मान की भी जरूरत नहीं रहती, ऐसा गणित है इस संसार का। जिस चीज को, चीजों की जितनी आकुलता है उसको मिल जाने पर उतना ही अधिक सुख होता हो, ऐसा गणित नहीं है। जिस चीज की जितनी आसक्ति है उसके मिल जाने पर भी उतना ज्यादा सुख नहीं होता, क्योंकि इतने परेशान पहले ही हो गए थे, अब मिली सो ठीक है, अब उतने थक गए थे, दिन भर बना उतरा है, उसके बाद संध्या को खावे मिली सो भूख तो वैसे ही खत्म हो गई। ठीक ऐसा ही है यहां पर, अगर अपन बहुत गौर से देखें, मैं तो सोचता रहता हूं इस तरह से, बहुत सारी आपको लग रहा होगा कि कहां कहां से बातें बता रहे हैं हमारे लिए, कहीं से नहीं, अपन सब अगर गौर से देखना शुरू कर दें तो ऐसा ही दिखता है यहाँ इस संसार में। बस फिर जो है अगर ऐसा हमारे मन में विचार दृढ़ हो जाए, ये तो अपन ने एक बार सुन लिया, एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, मैं ये भी जान रहा हूं आपको एक बार सुना दिया आपको, इससे आपका परिवर्तन हो जाएगा, आप अधिक बाहर निकलेंगे और बिल्कुल एकदम भगवान बन जाएंगे, मुझे बिल्कुल ऐसी अपेक्षा नहीं आपसे, और करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो दुखी होगा। नहीं, हम इस प्रक्रिया को क्या निरंतर कर सकते हैं, इसमें से जितना हमारे समझ में आया उसको हम अपने जीवन में क्या लगातार अनुभव में ला सकते हैं, बस इतना अगर आपने आज यहां संकल्प कर लिया तो परिवर्तन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम सब जानते हैं कि यहां पर आसक्तियां हमें दुख देती हैं, संसार में अगर हम अनाशक्त रहना सीख लें तो ये संसार हमको ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है, संसार की वास्तविकता को जानने का सिर्फ इतना ही काम है। ठीक है, जब हमने समझ लिया कि यहां दुखी दुख मिलता है तो करना क्या, हम आसक्ति की वजह से दुख पाते हैं तो आसक्ति कम कर देना, संसार अनुपेक्षा या संसार भावनाओं का अंत में हम क्या निर्णय पर पहुंचे कि यहां तो भैया कितने भी दौड़ लो, कितने भी आसक्त हो लो, यहां पर जो है आसक्ति और दौड़ धूप से सुख नहीं मिलता, जितने अनाशक्त और जितना संतुष्ट हम अपने आप में रहेंगे उतना ज्यादा हम इस संसार से धीरे धीरे पार हो जाएंगे, आवागमन से भी और जन्म मरण से भी पार हो जाएंगे। जिसकी जन्म में जितनी आसक्ति है, जिसे मरण में जितना दुख होता है, उसे उतनी ही बार जन्म और मरण करना पड़ता है। जन्म में जितना खुशी होते हैं हम उतनी और ज्यादा जन्म मिलेगा, मरण से हम जितने व्यथित होते हैं उतनी बार और मरण करना पड़ेगा, और जो जन्म मरण के बीच तटस्थ रहता है उसे बार बार न जन्म करना पड़ता न मरण, वो संसार से पार हो जाता। खूब उदाहरण इसके मालूम है अपन को, राजा जनक का उदाहरण मालूम है, मैं आपसे और क्या विशेष उदाहरण कहूं उसके बारे में, सब जानते हैं कि राजा जनक अपने घर में रह करके भी अनाशक्त रहा करते थे। आज भी हम जल से भिन्न कमल के समान रह सकते हैं, हम अपना कर्तव्य कर्तित्व ना माने, सिर्फ अपना कर्तव्य मान करके कि अगर गृहस्थी करी है तो हमारे कर्तव्य हैं कुछ, हमारे दायित्व हैं, हमारी लाइबिलिटीज हैं, उनको हम पूरा कर रहे हैं बस, और जिस दिन हमारा सब कुछ कर्तव्य पूरा हो जाएगा उस दिन हम फिर विमुख हो जाएंगे घर गृहस्थी से। घर में रहते हुए भी दृष्टि जंगल में हो जाए, इसी का नाम संसार भावना भाना है, नहीं तो जंगल में रह के भी दृष्टि घर में ही रखी रहे तो फिर अभी संसार गया नहीं है। इतना ही परिवर्तन अपन अगर अपनी दृष्टि में कर लें कि घर में रह करके भी हम अनाशक्त हो गए हैं, हम वहीं रह करके और उससे परे हो गए हैं, तो यही संसार अनुपेक्षा हमें सलाह देती है, हम इस तरह अपने संसार को भी कम कर सकते हैं, संसार में रह करके भी कम कर सकते हैं, अनाशक्ति जितनी जितनी हमारे जीवन में आती जाए इसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
आत्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, सब लोग पिछले दिनों से लगातार अपने जीवन के विकास के लिए बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारे जीवन में सुख और शांति आए, और सुख और शांति का उपाय एकमात्र ये है कि हम जो चीज जैसी है उसे वैसा समझें। तो हम लोगों के साथ मजा ये है कि जो चीज जैसी है हम उसे वैसा समझते तो हैं लेकिन उसे वैसा मान नहीं पाते। हम यदि जिस चीज को जैसा जानते हैं उसे अपने अंतरंग में भी वैसा ही स्वीकार कर ले तो फिर हमारा रास्ता आसान हो जाता है। जानी हुई चीज को अपने जीवन का अनुभव बना लेने के लिए एक प्रक्रिया आवश्यक है, उसी प्रक्रिया का नाम अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा हमें ज्ञान के साथ साथ अनुभव के लिए भी प्रेरित करती है। हम क्रम क्रम से वस्तु की वास्तविकता को जानते जाएं और उसे जीवन में अनुभव में लाते जाएं, इसके लिए अनुप्रेक्षा हमें निरंतर प्रेरणा देती है। दो चीजें अनुप्रेक्षा के साथ और समझनी चाहिए। अनुप्रेक्षा पृथक्करण की प्रक्रिया है, डी यूनियन जिसको कहते हैं या डिस यूनियन। दो चीजें जो अलग अलग हैं वे जब इस तरह से मिल जाती हैं कि एक मालूम पड़ने लगे, तब फिर उनको अलग अलग जान करके और अलग अलग करना, ये दोनों काम अनुप्रेक्षा करती है, वो हमें सलाह देती है। हमारी अपनी अज्ञानता की वजह से हमने अपने शरीर को, अपने जो कर्म हैं उनको, सबको अपना ही मान लिया है और इतने एकमेक हो गए हैं कि हम उनके बीच कोई भेद है ऐसा महसूस ही नहीं कर पाते। जब भी हम सोचते हैं तो अपने शरीर के स्तर पर ही सोचते हैं, ज्यादा होता है तो मन के स्तर पर सोचने लगते हैं, पर मन से भी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। अनुप्रेक्षा हमें दोनों बातें एक साथ सिखाती है कि अगर दो अलग अलग चीजें हैं और वे आपस में मिल गई हैं, तो पहली चीज तो ये विश्वास करो कि दोनों अलग अलग हैं, और दूसरी बात, दोनों को अलग अलग करने की कोई प्रक्रिया भी, जल पय ज्यों जी तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों होए मिल एक सूत्रा। समझाती है अनुप्रेक्षा। अपन ने पहले समझा था कि वैराग उपावन माई चित्तवो अनुप्रेक्षा भाई, ये वैराग को उत्पन्न करने वाली माता के समान है अनुप्रेक्षा। तो वो अपने बेटे को क्या सलाह दे रही है कि देखो, जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं और जिसने मिलते हुए नहीं देखा है उसको तो यही लगता है कि अलग अलग कहां है, ये तो दूध ही है, भले ही उसमें पानी मिला हुआ क्यों ना हो। तो वो समझाती है मां जैसे बेटे को कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ऐसी अनुप्रेक्षा हमको समझा रही कि ये दूध अलग है और जल अलग है, इसी तरह आत्मा अलग है और शरीर अलग है। सारा संसार का विस्तार, सारे संसार का फैलाव अगर किसी वजह से है तो उसका एक ही कारण है, मैं इस शरीर के प्रति अपनी आसक्ति को कम नहीं कर पाता हूं, मेरी शरीर के प्रति आसक्ति मुझे संसार में भटकाती है। नया नया शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि हम पुराने शरीर को एक बार पूरी तरह छोड़ नहीं पाते हैं, हमारी शरीर के प्रति कहीं ना कहीं आसक्ति बनी रहती। सारा संसार अगर हम गौर से देखें तो इस शरीर के द्वारा ही विस्तार को प्राप्त हुआ है, सारे संबंध शरीर के हैं। जिससे भी संबंध हमारे हैं, चाहे हमारे मां हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, सारे संबंध अगर देखें तो इस शरीर के ही संबंध है। आत्मा से तो आत्मा का ही संबंध होता है, लेकिन हमने शरीर से संबंध बना रखे हैं। डिसयूनियन के लिए हमें सलाह देती अनुप्रेक्षा कि इन दोनों को दो तो मानो कम से कम, इनको अलग अलग नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम पृथक पृथक तो मानो दोनों को, और जब पृथक मानेंगे तभी दोनों की तासीर समझ में आएगी, आत्मा का स्वभाव क्या है और यह चेतन, ऐसा नहीं, तू चेतन, देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन ते बिछुड़े ज्यों पय अरूपानी। जतन से बिछुड़े, मिले तो अनादि काल से दोनों एक साथ इतने एकमेक हो गए हैं, लेकिन अब कोई जतन करना पड़ेगा, कोई प्रयत्न करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा, तब ही अलग अलग हो पाएंगे। मिलना जितना आसान है, इन दोनों को जुदा जुदा करना या जुदा जुदा मानना उतना ही कठिन। सारी साधना इसी बात की है कि मैं अपने शरीर को कितना अपना मानता हूं और कितना पर मानता हूं, इस पर ही पूरा जीवन, पूरी साधना टिकी। जिन क्षणों में मैं शरीर को अपना मानता हूं, उन क्षणों में शरीर में होने वाले सुख दुख को भी मैं अपना ही मान लेता हूं, उसके सारे संबंधों को अपना मानता हूं, और जिस क्षण शरीर को मैं अपने से पृथक मानता हूं, तब उस समय शरीर की उतनी फिक्र नहीं करता जितनी कि अपने परिणाम और अपने आत्मा की फिक्र करता। यही अनुप्रेक्षा हमें सलाह देती है कि ठीक है, शरीर जब तक साथ में लगा है तब तक तो हमारा ही है, अब इसको कहीं उठा करके फिर थोड़ी आएंगे, हमारा नहीं है तो फिर दो, ऐसा नहीं है, पर इसका ठीक ठीक हम उपयोग कर लेंगे अगर हम ये समझ जाएंगे कि ये अलग है और मैं अलग हूं। और एक और काम होता है, एक तो अलग अलग जानने का, और दूसरा जैसे रंगरेज होता है वो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार के रंग रंग देता है, तब क्या होता है जो ओरिजिनल रंग है, जो कपड़ा मान लो सफेद था, उस पर कोई रंग अपन ने रंग दिया तो वो कपड़ा सफेद नहीं रह गया, रंग गया। इसी तरह तो हमारा जीवन भी है, हम पांचों इंद्रिय और उसके विषयों में अपने मन को रंगते रहते हैं। अनुप्रेक्षा हमें सिखाती है, डीकलराइजेशन सिखलाती है, हम उन विभिन्न रंगों से जिनसे कि संसार में हम अपने आत्मा को और अपने मन को रंगते रहते हैं, कहते हैं वो सारे रंग छुड़ाओ और हमारा अपना जो ओरिजिनल, जो हमारा अपना वास्तविक रंग है, उस रंग की पहचान करो, अपना वास्तविक चेहरा क्या है। जब कोई व्यक्ति बहुत सारे चेहरे दूसरे दूसरे लगा लेवे तो कई बार ऐसा होता कि वो स्वयं भी भूल जाता है कि मैं क्या हूं। जैसा चेहरा लगा लेता, जैसा अभिनय उसे करना होता वैसा अभिनय करने लगता है, तो मैं वास्तव में क्या हूं ये भूल जाता है। इसी तरह तो हम लोग भूले हुए हैं कि हमारा अपना वास्तविक स्वरूप क्या है। हम इतने प्रकार के रंग और इतने प्रकार के चेहरे बदल चुके हैं, इतने प्रकार के शरीर धारण कर चुके हैं कि अब हम अपना ओरिजिनल जो स्वभाव है उसको भूल ही गए हैं और उन्हीं में अपनापना मान करके और पूरा जीवन निकाल देते हैं। जैसा शरीर मिल जाता है वैसा हम अनुभव करने लगे, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं फला हूं, मैं मां हूं, मैं किसी का बेटा हूं, कितने प्रकार से मैं अपने को मान लेता हूं, लेकिन वास्तव में ये तो सब रंग हैं। जो जैसे कोई रंगरेज सफेद वस्त्रों पर हरा पीला लाल रंग लगा देता है, इसी तरह मैं भी अपने ऊपर जो है सुबह से शाम तक विभिन्न प्रकार के रंग चढ़ाता रहता हूं कि ये 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 ठीक है, फिर थोड़ी देर में दूसरा रंग चढ़ जाता है तो संसार का रंग चढ़ जाता है तो संसार अच्छा मालूम पड़ने लगता है। और जैसे अपन कहते ना कि महाराज जब आपके पास आए और भगवान की पूजा पाठ करी तो भगवान का रंग थोड़ा सा लग गया, तो भगवान के रंग में रंग गए तो जरा दूसरे ढंग का विचार आने लगा, और फिर संसार के रंग में रंगे तो फिर भूल गए। अनुप्रेक्षा क्या करती है, वो कितने भी रंग में आप रंग जाओ लेकिन वो याद दिला देती कि ये तुम्हारा ओरिजिनल नहीं है, बस इतना ही काम करती है अनुप्रेक्षा। जैसे कोई नया रंग लगना शुरू होता है हमारे जीवन में, पांचों इंद्रियों और मन के ढेर सारे रंग हैं, वो जैसे ही रंगना शुरू होते हैं वो इशारा कर देती कि देखो फिर एक नया रंग लगा, जरा सावधान रहना, तुम्हारा अपना ओरिजिनल चेहरा ना मिट जाए, तुम्हारा अपना जो अपनी पवित्र आत्मा की पवित्रता है वो मलिन होती चली जा रही है, तुम फिर एक रंग बिरंग रहे। तो इस तरह अनुप्रेक्षा हमको सलाह देती है कि जो पर है उससे कितना भी एक मेक हो जाओ, लेकिन पर को पर मानो। डिसयूनियन, जो दो चीजें अलग अलग हैं फिर भी एक मालूम पड़ती हैं, उनके लिए अलग अलग ही जानो, इतना तो करो और कोशिश करो कि वे अलग हैं ऐसा अनुभव करो। मैं इस शरीर को खिलाता हूं, मैं इस शरीर को नहलाता धुलाता हूं, मैं सुलाता हूं। आचार्य महाराज कई बार कहते हैं कि जिस समय हम लेटने लगे तो क्या विचार करना, मैं इस शरीर को सुला रहा हूं, मैं फिर भी नहीं सोऊंगा। जब आहार करने लगे तब विचार करो कि मैं इसे खिला रहा हूं, मैं तो नहीं खा रहा। बहुत कठिन काम है ऐसा, अपन विचार भले ही कर लेंगे लेकिन अनुभव नहीं होता ऐसा कि मैं, लगता तो यही है कि मैं खा रहा हूं। कोई भी कितने भी साधना करने वाला हो बहुत मुश्किल है कि उसको ये लगे कि मैं नहीं खा रहा हूं, ये तो शरीर खा रहा। सोचने को सोच सकते, कहने को कह सकते हैं वाणी में और मन में, लेकिन अनुभव में कैसे विरले लोग हुआ करते होंगे कि जिनकी देह भक्षण की जा रही है लेकिन इसके बाद भी वे अपने आत्मा से विचलित नहीं होते हैं। ये है पृथक्करण की प्रक्रिया। अकेले मुंह से कह देना आसान है कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, और बारीक चर्चा कर लेना आत्मा की ये भी बहुत आसान है, लेकिन जिस क्षण शरीर के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए उस क्षण अपने को बिल्कुल अलग रखना और शरीर को अलग देखना कि हाँ ये छिज्जदुवा विज्जदुवा निज्जदुवा अहवजाद विप्पल्यम जम्हा तम्हा दुगच्छदु तहा बिन परिग्रहो मच्छ। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि छिद जाए भिद जाए, कोई इसे उठा करके कहीं फेंक आवे, लेकिन मैं अपने भीतर में सजग हूं, देह मेरा परिग्रह नहीं हो सकती है, देह में मेरी आशक्ति नहीं है, देह से अनाशक्त होने की प्रक्रिया अगर कोई सिखाता है तो अनुप्रेक्षा सिखाती। क्यों? क्योंकि वो हमें हमेशा सजग करती रहती कि देखो फिर तुम फंसे उसमें, फिर तुमने एक नया रंग लगाया, फिर तुमने एक नया संबंध बनाया, ये सारे संबंध उसी के हैं, और फिर गड्ढमड्ढ होने वाला है मामला, तुम्हारी निखालिश जो आत्मा है वो फिर मलिन होने वाली है, ऐसा हमें इशारा कर देती है अनुप्रेक्षा। तो दोनों काम करती है, जो पृथक हैं उनको पृथक अनुभव कराती है, और जो हमारा अपना वास्तविक रंग नहीं है उस रंग को भी हटाती है, डिकलराइजेशन करती है, हमारे ऊपर चढ़े हुए विभिन्न पांचों इंद्रिय और उनके मन के विषयों के रंगों को हमसे अलग कर देती है, और हमें विशुद्ध करने के लिए हमेशा प्रयत्न करती है। यही अनुप्रेक्षा है। अपन ने पिछले दिनों लगभग आधी यात्रा पूरी कर ली है, आज जो है अपने शरीर के बारे में ही हमें विशेष रूप से विचार करने के लिए अनुप्रेक्षा प्रेरित कर रही है। शरीर के बारे में कैसा विचार, पहले ये देख लो कि शरीर के बारे में हम कैसा विचार करते हैं, क्या वो हमारा विचार ठीक है शरीर के बारे में? शरीर के बारे में हम ऐसा विचार करते हैं कि ये हमको बहुत मुश्किल से मिला है, हमने कोई बहुत पहले साधना करी होगी इसलिए ये देह मिली है, अच्छा और फिर ये देह मिली है और पांचों इंद्रियां मिल गई हैं, तो फिर अब अपने को ऐसा करना चाहिए कि जब मिली ही है, जब मिली है तो इनसे खूब इनका उपयोग करना चाहिए और खूब आराम से, अब आंख मिली है तो बढ़िया से देखो, मुंह मिला है तो बढ़िया से उससे बोलो, चाहे जो बोलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंख मिली तो देखो, ऐसा मन में जो है एक एक दर्शन है जो ये कहता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमो कुतः, बड़ी मुश्किल में मिली है जा, इसे तुम तो अगर उधार करने पड़े तो उधार कर लो, पैसा ले लो और जित तो खुआ पाओ से को खुआ लो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, हाँ यावत जीवित सुखी जीवित, जब तक जियो अच्छे से जियो सुखपूर्वक जियो, ऋण भी लेना पड़े तो ले लो, पर इस शरीर के जितने भोग हो सकते हैं वे सब जुटा लो, इस जीवन में फिर मिली कि नहीं मिली कब। अब देखो एक दृष्टिकोण ये है कि फिर ये मिली कि नहीं मिली, ऐसा विचार करके इसके द्वारा भोग भी भोगा जा सकता है, और अनुप्रेक्षा दूसरा विचार देती है कि ऐसा तो कई बार करके देख चुके, कौन आज की नई बात, ये जितनी बार मिली हमने इससे यही तो किया है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ, इसको कोई संतृप्ति नहीं हुई। अब हम दूसरी प्रक्रिया बताते हैं। अभी मुझे किसी ने बताया कि विदेश में जो है जैन धर्म पढ़ाने के लिए बड़ा नया पैटर्न शुरू किया है उन्होंने, और वो बच्चों को पहले ये पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कोई बता देता है कि मैं ये हूं, मैं उनका लड़का हूं या ऐसा, फिर उसके बाद वो बताते हैं कि अच्छा हम एक बात और तुम्हें बताएं कि तुम जीव भी हो। वो कहते हैं जीव के मायने क्या होता, जीव के मायने होता है जो जानता देखता है। अच्छा तुम्हें तो जानता देखता हूं, तो देखो तुम जानते देखते हो ना, इसलिए तुम जीव भी हो, तुम और बाकी चीजें तो होगी, तुम जीव भी। अपने लिए ये आसान है यहां पर कि हम जीव हैं, अपन ने रट लिया है, बच्चों को शुरू से रटा दिया जाता, लेकिन वास्तव में हम देखें अपना दृष्टिकोण, देखें कि हम किस दृष्टिकोण से, तो वही चीज अपन पहले करें कि शरीर को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उसकी दुर्लभता का लाभ कैसा ले रहे हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा विचार करता है कि शरीर बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए अब जितने पांचों इंद्रियां मिल गई तो उनके जितने प्रकार के भोग हो सकें वो सब भोग लो, और दूसरा व्यक्ति विचार करता है कि अरे बहुत मुश्किल से मिला है इसलिए इसका सदुपयोग कर लो, इस शरीर का काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रो वे फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय। दूसरा व्यक्ति अनुप्रेक्षा करने वाला उसी शरीर के बारे में क्या विचार कर रहा है, विचार कर रहा है कि ये तो काना पौड़ा बानर जिसको अपन कहते गन्ना की, ऐसा वो वाला पोर्शन जिसको कि खाया नहीं जाता है, और अगर कोई खाने की कोशिश भी करे तो दांत वांत सब टूट जाते और रस आता नहीं। अरे क्या बोलते बाण, तो बोलते हैं उसको बाण, हाँ जो भी बोलते हो, तो वो खाने योग्य नहीं, चूसे तो रोग है, अगर चूसेगा तो रो नहीं पड़ेगा, कुछ उससे मिलता रहता नहीं, सारा उसमें मीठा नहीं मिलता, और लेकिन अगर उसी को पीस कर करके और बो दिया जाए तो और बहुत सारे रस युक्त गन्ना निकल आएंगे। इसी तरह ये शरीर है, काना पौड़ा है, ये तो सार नहीं है, अगर इसमें से सार निकालना चाहो तो इसको धर्म ध्यान की भूमि विषय भूवे, इसको अगर धर्म ध्यान में लगा दो तो इसके द्वारा सार निकल आए। कहते हैं पुण्य के फल स्वरूप मिली हुई देह और निरोग इंद्रियां और बुद्धि के कौशल का सदुपयोग कर लेना ही पुण्यानुबंधी पुण्य है, और पुण्य के उदय से मिली हुई निरोग देह और बुद्धि कौशल का पाप कार्यों में उपयोग करना पापानुबंधी पुण्य है। हम अपने पूर्व अर्जित कर्मों को क्या दिशा देना चाहते हैं यह हम पर निर्भर है, अनुप्रेक्षा हमें सिखाती है कि हम क्या दिशा दें। शरीर सबको मिला है और शरीर जब तक आयु है तब तक हमारे साथ रहेगा, अब क्या करें, इतना घनिष्ठ ये व्यक्ति है, इस घनिष्ठ व्यक्ति से कैसा व्यवहार करें ये हमारे ऊपर है, इसको उठा के कहीं फेंका नहीं जा सकता, इसके बिना काम नहीं चल सकता, शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर तो पहला साधन है धर्म का, पहला सुख अगर किसी को है तो निरोगी काया का है। इसलिए जो है इस शरीर की भी मुझे फिक्र तो करनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि शरीर की फिक्र में जो फिक्र कर रहा है वो ही नष्ट हो जाए। कौन फिक्र करता है शरीर की? मेरे भीतर बैठा हुआ आत्मा उस शरीर की फिक्र कर रहा है। तो जितनी वो शरीर की फिक्र करे उतनी अपनी भी फिक्र करे, बस इतना ही बहुत। तो इस शरीर को हम संभालेंगे, लेकिन क्यों संभालेंगे? क्योंकि मुझे अपने आत्मा के परिणाम संभालना है। अपने आत्म परिणाम अगर बिगड़ते हों तो मुझे शरीर की भी चिंता नहीं है, और इस शरीर की मुझे चिंता है क्योंकि ये मुझे अपने आत्म परिणाम सुधारने में सहयोग करता है। बस इतनी ही इसकी मुझे चिंता रखनी। दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूरख प्रीति बड़ा, ऐसा लिखा। मूरख देह स्वभाव बराबर, जैसे मूरख आदमी का स्वभाव है उसको बदला नहीं जा सकता, और उसकी संगति करो तो सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही कह रहे कि मूरख देह स्वभाव बराबर, नहीं दुर्जन देह स्वभाव बराबर। दुर्जन आदमी जैसे दुर्जन की संगति करो तो उससे कुछ नहीं मिलता, इसी तरह देह तो दुर्जन के समान है, और कोई मूरख हो जो इसे प्रीति बढ़ावे। कहते मूरख, ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवंत कि जो इससे प्रीति रखे वो मूरख तो है ही। ऐसा विचार कौन कर सकता है? वास्तविकता का विचार करने वाला, अनुप्रेक्षा करने वाला व्यक्ति। और 24 घंटे देखो, अपन इतनी देर बैठे हैं उतनी देर अकेले नहीं। जब शरीर की सेवा टहल करने का अवसर आवे उसी समय, जब हाथ मुंह धोने का बार बार मन होवे तब कह रही फिर वही बात, अच्छा चलो धो लो अब। लेकिन अभी तक वो पाई उजड़ी भई, अभी तक बहुत तो धोई, कभी नहीं हो पाई। जो धोवे त्यों मैली, और निस्जिन करे उपाय देह का रोग दशा फैल। रोज उपाय करते हैं, रोज क्षुधा की वेदना तो रोज है, इससे बड़ा रोग तो कोई और नहीं है। सबसे बड़ा रोग तो रोज भूख लगती है, अब भाई चलो इसको दिला के आओ, और जरा इसके मन का नहीं हो तो ये नाराज है, काम नहीं करती बिल्कुल। ऐसी ऐसा इसको कहते ही है, इसलिए कहते दुर्जन है ये। और हर आदमी की दृष्टि जो है इसी पे चली जाती। हम तो दिन में 25 दफे जाई सुना, कोई भी आप कमजोर हो गए महाराज, पहले से बहुत कमजोर दिखा।